ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18। ये जो है छठा स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, जो 10 प्रसंग हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय मनोन्तर ईशानुकथा निरुत्थम मुक्ति और आश्रय, इसमें चौथा प्रसंग है पोषण। तो भगवान अपने भक्तों को कैसे पोषण करते हैं, ये प्रसंग छठा स्कंद में है। जैसे चौथा स्कंद है विसर्ग, तीसरा स्कंद है दूसरा और तीसरा स्कंद सर्ग, तो यह है पोषण। ये पोषण में चार प्रसंग है, पहला अजाम्बिल, दूसरा दक्ष, तीसरा बुरतासुर और ये चौथा है कि जो अंचस अरुत मरुत जो दिति की गर्भ में थे तो भगवान कैसे उसकी रक्षा की पोषण। तो ये प्रसंग है कि राजा इंद्र का बद्ध करने के लिए दिति का व्रत। तो आप लोग जानते हैं कि प्रसंग इस प्रकार है कि जब भगवान विष्णु के द्वारा देवता लोग अपने स्थान को स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त कर लिए और असुर जिनकी मुख्य थे बलि महाराज वो देवताओं के द्वारा परास्त होकर के उन्होंने स्थान छोड़कर के चल गए, तो दिति ने एक व्रत किए अपने पति की आज्ञा के अनुसार जिनका नाम है पुंसवन व्रत। तो इस व्रत का विधि क्या है कश्यप जी बता रहे हैं। स्त्रियो विरवती चार्चे स्रगंध बलिमंडने पतिम चार्जो पतिष्ठेत धायेत कोष्ठगतम चतम स्त्रियो विरवती चार्जे स्रगंध बलिमंडने पतिं चार्जो पतिष्ठेत धायेत कोष्ठगतम चतम स्त्रिया विरवती चार्चे स्रगंध बलिमंडने पतिं चार्जो पतिष्ठेत। धायेत कोष्टम गतम चतम स्त्रिया स्त्रिया वीरवती पति तथा पुत्रों से संपन्न च तथा अर्चे पूजन करना चाहिए स्र पुष्प मालाओं से गंधा चंदन बड़ी भेंट मंडनई तथा आभूषण से पतिम पति की च तथा आर्य पूजा करके उपतिष्ठेत स्तुति करना चाहिए स्तुति करके पास में बैठना चाहिए, ध्याये ध्यान करना चाहिए, कोष्ठगतम गर्भ में रहकर, च भी तम उनको। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा पुष्पमाला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में स्थित है। कौन किसकी गर्भ में स्थित है? तात्पर्य, गर्भस्थ शिशु पति के शरीर के अंग होता है, अतः पति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने गर्भवती स्त्री के गर्भ में निवास करता है। जत कीर्तनम, जत स्मरणम, जदीक्षणम, जत वंदनम, जत श्रवणम, जदारणम, लोकस्य सत्य वितनोति कल्मष तस्मै सुभद्रस्रवसे नमः। तो इस श्रीमद् भागवतम में विशेष करके भगवान कैसे अपने भक्तों को पोषण करते हैं, किससे पोषण करते हैं? अपने कृपा से, अनुग्रह से, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए छठवां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी एक के बाद एक प्रसंग को उपस्थापित करते हैं, अजामिल से लेकर के ये अंचस मरुद की कथा तक। तो दैवासुर संग्राम के बाद तो देवता लोग जीत लिए, किनको? असुरों को। एक्चुअली दैवासुर संग्राम तो हुआ था आठवां स्कंद में, तो भगवान ने छलना करके अपने देवताओं को रक्षा की। लेकिन ये छठा स्कंद की प्रसंग के पहले क्या घटना थी कि असुर लोग देवताओं के भय से भाग गए। इसलिए नहीं, दीति ने क्यों पुंसवन व्रत किए? इन क्यों? ये प्रसंग है कि असुरों की रक्षा करने के लिए माता दीति ने हमेशा प्रयत्न से लिया, क्योंकि वह असुरों की मां है। तो इसकी पूर्व प्रसंग में तीसरा स्कंद में हिरण्याक्ष के बाद और छठवां स्कंद में हिरण्यकशिप की बात, और फिर आगे आठवां स्कंद में बड़ी महाराज के प्रसंग। ये सब सुखदेव गोस्वामी क्रम से ही कथा को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि इसके बाद ये हुई थी, इसके बाद ये हुई थी, ऐसा नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा अनंत जयंत कहते हैं, लेकिन देवता लोग इसको क्रम से, मतलब अनंत देव ने ये लीला को प्रस्तुत किए, इस कल्प के लीला को, तो देवता लोग उसको सुने, उसको रिकॉर्ड करके रखे, क्योंकि स्मृतिधर होते हैं, तो फिर इसको गायन करते हैं उपेंद्र के सामने। परंतु सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के सामने कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, वासुतो गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को जो कथा सुना रहे हैं, ये मिश्रित हैं, सब प्रकार की कथाओं को समाहार है। यहां तक दसम स्कंद में कृष्ण की लीला का भी वर्णन जो है ये क्रम से नहीं हुई है, ये व्यतिक्रम है। यद्यपि जो मुमुक्षु हैं, जो भगवत कथा के पिपासु हैं, तो इसमें आगे पीछे की कथा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये कारण है, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण जीव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की जय। तो दिति की बहुत डर थी कि आगे भी जो असुर बचे हैं ये भी सारे खत्म हो जाएंगे। ये किस लिए विष्णु ने इसे करते हैं कि इंद्र को रक्षा करने के लिए। इंद्र ने जाकर के तेल लगा रहा है विष्णु के पास, तो इसलिए इंद्र के कारण भगवान तो समदृष्टा है, सबके प्रति समान भाव रखते हैं, समान दृष्टि रखते हैं। परंतु ये इंद्र जाकर के चापलासी करता है, तेल लगाता है, इसलिए इंद्र यदि मर जाएगा तो फिर मेरी पुत्र सुरक्षित रहे। यदि उनकी भी वो पुत्र है, अदिति की पुत्र है, परंतु ये एक स्पष्ट भागवतम में स्त्रियों की स्वभाव को भी प्रदर्शित किया गया है। जैसे भगवान शिव की भी पति भवानी, वो शिव जी की भी बात नहीं सुनी। तो यहां एक महान पति की पत्नी है दिति, परंतु इंद्र जैसे महान देवताओं को मारने के लिए उन्होंने भी अपने पति से आज्ञा मांग ली। यदि कश्यप नहीं चाहते थे, लेकिन इनको अपने पत्नी को संतुष्ट करने के लिए, ये कितने बड़े समाज में सारी व्यतिक्रम होता है, पति को संतुष्ट करने के लिए भी एक धर्मात्मा महान ऋषि कश्यप ने भी उनको झुकना पड़ा और कहे कि ठीक है, तुम यदि ये व्रत करना चाहते हो ना, इंद्र को मानना चाहते हो तो ये व्रत करो, लेकिन ध्यान रखना यदि व्रत में गड़बड़ी हो जाए तो फिर सब उल्टा इसके फल आएगा। तो आगे सब आप सुन चुके हैं कि किस प्रकार कश्यप जी ने बताए कि सोच तक का नियम को पालन करना चाहिए, मन से और शरीर से दोनों प्रकार स्वच्छता को पालन करना चाहिए। तो उसमें कहे कि धौतो बासा, धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, सुचिर नित्यम, हमेशा ही पवित्रता को अपनाना चाहिए, सर्व मंगल संजुता, और हमेशा शुभ कार्य ही करना चाहिए, मंगलमय कार्य करना चाहिए, और सवेरे सवेरे उठकर के क्या करना चाहिए, प्रातः पूजयेत, प्रातः काल में ही पूजा करना चाहिए। किसको? गो विप्रात, खाने की पहले अर्थात जगने के बाद स्नान करके ब्राह्मण और गौओं की पूजा करना चाहिए, और साथ साथ श्रीयम अच्युतम, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। तो ये पूजा की विधि बतलाते हैं और आगे भी किस प्रकार पूजा किसकी किसकी करना चाहिए। पवित्र होकर ही पूजा करना चाहिए, इसलिए हम लोग स्नान करके मंदिर को आते हैं। किस भी चीज यदि भगवान की भोग बनाना है, भगवान की पूजा करना है, मंदिर साफ करना है, पहले आप अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए, फिर आगे कहें ये सब शारीरिक तपस्या है। शारीरिक पवित्रता के बिना मानसिक पवित्रता भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हम बद्ध हैं। लोग ऐसे कहते हैं, मन यदि चंगा तो गोबर गड़ा गंगा, है ना, कि मन यदि स्वच्छ है तो जो गोबर से बना हुआ जो गड्ढा है वो भी गंगा नदी बन जाता है। तो इसका मतलब है गोबर गड़ा में स्नान कर लेना चाहिए, फिर हरिद्वार नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इससे से वो उल्टी बुद्धि है, 9 बजे तक पेपर पढ़ते रहेंगे, चाय पियेंगे, कोई स्नान नहीं। लेकिन भागवतम में उसी प्रकार जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया है, ये असुरों की वृत्ति है। यहां तक ये कहा गया है कि तुम यदि सौभाग्यवती होना चाहते हो, तुम्हारा अभीष्ट को प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे बलशाली पुत्र को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप एक स्त्री को पूजा करो। कौन सी स्त्री? ना वीरवती स्त्रियों, वीरवती की अर्थ सिद्धर स्वामी कहते हैं पुत्रवती, और पुत्रवती की व्याख्या गिरिधारी लाल करते हैं, उनकी टीका के ऊपर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि जो स्त्री है विवाहित है और पति के साथ है और पति से ही पुत्र प्राप्त हुआ है ना, कभी कभी व्यतिक्रम होता है किसके पुत्र नहीं होता है, तो ऐसे ही उनके देवर से पुत्र उत्पन्न कर सकता है, देवरुणा सुतत्पति, ये वैदिक नियम भी है। पति मर जाने के बाद वो देवर से भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, पति की आज्ञा से, जैसे व्यासदेव ने अंबा अंबिका और अंबालिका, है ना, अंबा तो चल गई तो अंबिका और अंबालिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किए। कहते नहीं, ये पुंसवन विधि के लिए क्या है ना, वीरवती अपने पति होना चाहिए और पति से जो गर्भ धारण करके पुत्र जन्म दिए हैं वो सौभाग्यवती स्त्री की पूजा करना चाहिए। इसलिए वीरवती शब्द है जो अपने पति से पुत्र प्राप्त किया है और अपी उनकी पति जीवित हैं, उनको क्या करना चाहिए, अर्चित, उनको हम पूजा करना चाहिए, खासकर जो ये व्रत को पालन करेगा जो स्त्री। कैसे पूजा करना चाहिए, श्रक, श्रक मतलब माला, सुंदर माला। ऐसा नहीं है कि कोई बोरी से बांध करके जो फूल लेके आते हैं उसमें कीड़ा है, सड़ा हुआ फूल है उसमें माला बना दे और भगवान के गले में हम डालते हैं तो कीड़ा कटता है भगवान के गले ना, तो उनको तो पता नहीं चलता है, हम तो विग्रह में डालती है, लेकिन जिसके गले में हम डालते हैं वो प्रसादी को जब कीड़ा काटता तो पता चलता है कि किस प्रकार ये माला है। फूल होना चाहिए सुगंधित फूल, और क्या होना चाहिए, और ताजा फूल होना चाहिए, इसको कहते हैं श्रक, जिसमें सुगंधि निकले जो फूल माला से। श्रक गंध, जैसे इतर है, हम भगवान के शरीर में इतर लगाते हैं गंध, और भी जैसे चंदन है, अगुर है, वो भी हम भेंट करना चाहिए किसको, ऐसे स्त्रियों को जो पतिव्रता स्त्री हैं, पुत्रवती हैं। ऐसे स्त्री तो बहुत सारी स्त्री हैं जिनके पुत्र भी नहीं है परंतु सदाचारी हैं, परंतु ऐसे स्त्रियों को भी पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए पुत्रवती शब्द है। वो पुत्रवती स्त्री को जो सती स्त्री है उनको इसी प्रकार पूजा करना चाहिए, माला गंध चंदन अगुर आदि, और बड़ी, बड़ी मतलब है भेंट, उपहार, गिफ्ट, मान लीजिए सुंदर साड़ी है, कोई आभूषण उनको लायक है तो ये भी देना चाहिए, बैठने के लिए आसन, ओढ़ने के लिए चादर, ये है भेंट। ये सारी चीज नहीं कहा जा सकता है उनको, क्या क्या स्त्री को, जो कॉस्मेटिक चीज भी है, जो वैदिक सभ्यता में जैसे स्त्रियों हैं कि सुंदरता की स्वरूप है, तो इसलिए उनको जो अच्छा लगे, सुहावना लगे, तो वो चीज भेंट करना चाहिए। इसलिए बड़ी भी शब्द से ये इंगित है कि वो स्त्री को जो जो चीज अच्छा लगे, सुंदर लगे, मान लीजिए इयररिंग वा गहना है, गहना को तो आगे स्पष्ट करते हैं मंडनी, मंडनी के मतलब है अलंकार, जैसे नेकलेस है, चूड़ियां हैं, पायजन है, अंगूठे हैं, नथुनी है, ये सब वर्णन है, सिंथी इसको बोलते हैं ना, जो मस्तक पर लगाते हैं, ये सब वास्तविक जो वस्त्र आभूषण के जो वर्णन है, जैसे हम अपेंडिक्स में पढ़े हैं श्रीमद् भागवत में, ए टू जेड श्रीमद् भागवत में सारे चीज हैं, आर्ट, बी का मतलब ब्यूटी, ये सब वर्णन है किस प्रकार सुंदर, जैसे श्रीमद् माता जशोदा के वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, देखो ये मरने वाला है राजा 7 दिन के अंदर, उनको ये सब कथा क्यों सुना रहे हैं, कि इस प्रकार कितनी सुंदर लग रही थी, उनकी मोटी कमर थी, तो रेशमी साड़ी पहनी थी, लहंगा पहनी हुई थी, ये प्रकार डिटेल वर्णन है। तो वास्तविक ये पवित्र जो कथा है, इस कथा को भी ध्यान करने से, सुनने से भी पवित्र होते हैं और इस विषय को ध्यान करने से भी पवित्र होते हैं। इसलिए इसको कुकुट न्याय की तरह एक पक्षी को स्वीकार करके एक पक्षी को त्याग नहीं करना चाहिए। यह हर विषय विचार करने योग्य है। तो कहें कि बड़ी मंडनी सुंदर आभूषण भी प्रदान करना चाहिए। पतिं च आर्चे उपतिष्ठेत, आ का मतलब है सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से पति की उपासना करना चाहिए, अर्च्य पूजा व उपासना करना चाहिए। ये पहला लक्षण है पतिव्रता स्त्री की कि पति की मन की अनुसार ही कार्य करे। कहते चा अर्ज्य, आ का मतलब है सर्व प्रकारेण अर्चेत, कैसे स्तुति भी सह, स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं जब परशुराम की पिता जमदाग्नि ने आदेश दिए, जब उनका पत्नी कौन है रेणुका पानी लेने के लिए गई थी, तो देखी कि उन्होंने गंधर्व की जो जल क्रीड़ा हो रहा था उसको देखते हुए उन्होंने मग्न हो गई। तो ये बात को ध्यान से जमदाग्नि जान ली, ये व्यभिचरण स्त्री है, क्योंकि जिनकी मान पति में नहीं लगा हुआ है वो कैसे स्त्री है। बड़े बेटा को कहे गला काट दो, ये व्यभिचरण की, ये तुम्हारा मां नहीं है। देखिए, परंतु कोई साहस नहीं किया, तो इसलिए जमदाग्नि ने सबको खत्म कर दिया। फिर जब उन्होंने परशुराम को आज्ञा दी, तो परशुराम समझ के भाई जमदाग्नि का बहुत शक्ति है, तपस्या की शक्ति, अगर ऐसे कार्य न करो तो मेरे भी हालत होगा, लेकिन मैं यदि कार्य को करूं मेरा दो लाभ होगा। एक तो है कि मैं पिता को संतुष्ट कर सकूंगा, और पिता संतुष्ट होने के बाद मैं उनसे मांग करके फिर मेरे भाई और मां को जीवित कर दूंगा। तो रेणु का ये शब्द सुनकर कि नहीं कहा कि तुम कैसे कैसे हो गए, मेरे पति है, मेरे हाथ पकड़कर विवाह किया मुझे मारने के लिए, ऐसा नहीं कही, क्योंकि जानती थी कि मैं पति के हाथ में मेरे जीवन को बेचती हूं। तो रेणुका ने थर थर कांप रही थी और परशुराम ने गले भी काट दी। फिर बाद में जब रेणुका को फिर जीवन प्राप्त हो गया, परशुराम ने मांग लिए, फिर उसके बाद उनकी दोष लगा, ये पत्नी को कोई भी स्त्री, अबड़ा स्त्री हो और छोटा बालक हो, वो हमेशा ही क्षमा की पात्र है, ऐसे कठोर दंड नहीं देना चाहिए। बच्चा यदि कुछ धृष्टता करता है, ऐसा पिता माता तुरंत ऐसा नहीं कहते इसको जेल में डालो, कहते हैं क्या एक दो थापड़ मारते हैं फिर ऐसे ठीक हो जाए। यहां तक कि कोई मां बहुत गुस्सा होकर के जब बच्चे को मारती है तो दूसरे लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, तो मां है कि राक्षसी हो, इतने बच्चों को मारते हैं। क्योंकि वास्तविक ये वैदिक विधान है कि किसके प्रति हम दया करना चाहिए, वृद्ध हैं, बालक हैं, स्त्री हैं, उनके प्रति दया करना चाहिए। तो जमदाग्नि ने ऐसा नहीं किए थे, इसलिए सहस्र बाहु अर्जुन उन्होंने आकर के उसकी गला कट के लेके गए, गाय के लिए आए थे ना, गाय नहीं दिया था, इसकी परिणाम भुगतना पड़ा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं यहां तक कि परशुराम को भी अपने मां की गला कटने के कारण उनको भी दोष भोग करना पड़ा, भगवान राम से हार गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो कहते जो वैदिक के नियम है उसको उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसके फल भोगना पड़ता है, चाहे वो भगवान की सत्यावश अवतार क्यों ना हो, व जमदाग्नि क्यों ना हो, व कर्तव्य अर्जुन। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परागति। कभी परागति नहीं है कि सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए सब अपने अपने धर्मों को निभाना चाहिए, क्योंकि धर्म से हम जी रहे हैं। जियो धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन नहीं रहेगा, पशुतुल्य। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने पति की मन के अनुसार धर्म के नियम को पालन करें। इसलिए कहा जाता है पतिम च आर्चो उपतिष्ठेत। पहले उनकी स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमें भूल गया। फिर उन्होंने जब जमदग्नि के गले काट दिए तो रेणुका ऐसे नहीं कही बहुत अच्छा हुआ, ये मेरी गला काटा था इसलिए उसकी गला कट गया। उन्होंने तुरंत पुकारने लगा। पहले तो जब सहस्त्रबाहु अर्जुन आया, हाँ सहस्त्रबाहु और अर्जुन के पुत्रों ने काट लिए थे, तो ये प्रार्थना किया, अरे मेरी पति निर्दोष है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कोई छोड़ा नहीं, ये सब निर्दय और नृशंस थे। तो फिर इतनी जोर रेणुका ने विलाप करने लगी कि तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, उनका ध्यान टूट गया और दौड़ करके उन्होंने आए फरसाले करी, मेरी मां क्यों रो रही। तो एक पतिव्रता स्त्री जो है हर परिस्थिति में अपने पति के अनुकूल रहना चाहिए। कहते उपतिष्ठित, उनकी पास समीप में रहना चाहिए। जैसे ऐसा नियम है, ऐसा नहीं कि एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही पति पत्नी खा ले। पहले स्त्री को पति को सेवा करना चाहिए, खिलाना चाहिए, अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, उसके बाद जो बचा रहे अतिथियों को सेवा करना चाहिए, बाद में जो बचे उसको खाना चाहिए। ये धर्म है। हमारे भी उधर ऐसे भी प्रथा है, जो बहु ब्याह करके आती है नहीं तो पहले उनका कैसे हाथ से बना हुआ भोजन है तो सबको परोसना पड़ेगा। यदि बड़ा परिवार है सबको, तो सब फ्री फीडबैक देंगे कि कैसा कैसा है ना, तीन दिन तक। और सवेरे उठकर की गोबर पानी में सब छिड़ा लगाना कि कितना वो पंक्चुअल है। और फिर सबकी सेवा करने के बाद रात को जो भी परिवार में सब स्त्रियां हैं बैठ करके खाती। लेकिन आज वो सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं। यहां तक कि पति आने के पहले भी पत्नी खा लेते, बस उनके लिए मैं कितना लेट तो कौन ऐसा बैठे नहीं। पतिम जो उपतिष्ठेत, उनके लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। बस मेरी ड्यूटी खत्म हो गया, अभी मैं रेस्ट करता हूं, टीवी देखते हूं, बस मेरा हो गया काम। नहीं, उपतिष्ठेत उनके पास रहना चाहिए। और फिर कश्यप मुनि कहते हैं कि कोष्ठगतम धायत चतम, उनको ध्यान करना चाहिए। पति के पास बैठ करके अपने कोष्ठगतम गर्भ में जो संतान है इसको ध्यान करना चाहिए। किसके रूप में? कि मेरी पति है। वास्तविक पति ही पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को दंड देने के लिए गया तो उस समय द्रौपदी ने प्रार्थना की। ये बहुत बड़ा नृशंस कार्य, बहुत बड़ा अपराध करने आप जा रहे हैं कि जिस गुरु से तुम शिक्षा लिए उसके अब सिर काटने जा रहे हो। अर्थात ये अश्वत्थामा नहीं है, स्वयं द्रोणाचार्य है, क्योंकि पुत्र ही अपने पिता के स्वरूप है। मेरी पुत्र मरने के बाद मेरी हृदय में जो यंत्रणा व दुख हो रही है वो एक स्त्री ही समझ सकती है जो पुत्रवती है। और तुम यदि उसी प्रकार इनको मार दोगे अश्वत्थामा को तो उनकी मां की क्या हालत होगी, क्या दशा होगी, तुम कभी सोचे हो? इसलिए मनस्तत्व के द्वारा सबके हृदय को पहले पढ़ना चाहिए। और वैष्णव की एक सदाचार ये है कि किसके मन में कोई उद्वेग पैदा ना करे, कोई ठेस ना पहुंचाए, कोई दुख ना दे। इसलिए वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च। और शरीर पर भी संयम रखना चाहिए, वो है क्या है, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तपोच्यते, देव दीज गुरुर प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम। भगवान की पूजा करना चाहिए, आचार्यों की पूजा करना चाहिए, विद्वान की पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए, गुरुर प्राज्ञम पूजनम, अपने शरीर को हमेशा ही शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि आर्ज्य तभी हम कहलाएंगे जब हम अपने जीवन को सुधारेंगे शौचता के मार्ग पर। इसको कहते हैं आर्ज्य। जो शौचता को नहीं अपनाते हैं अनार्ज्य हैं, जवान है, ये भी असुर हैं। तो शारीरिक स्वच्छता भी आवश्यक है, शारीरिक संयमता भी आवश्यक है। पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा न करें। हिंसा के अर्थ ऐसे गांधी जी कहते थे, किसी जीव को हत्या नहीं करना, परंतु प्रभुपाद इस मत पर सहमत नहीं देते। वो कहते हैं कि वास्तविक अहिंसा है कि जीव की जो क्रमोन्नति होता है, जो विकास होता है, इस विकास पर बाधा पहुंचाना। तो फिर अर्जुन ने क्यों इतने लोगों को मारा, इतने सैनिकों को मारा कुरुक्षेत्र में? तो अहिंसा धर्म को पालन किया कि नहीं किया? इसलिए तो सब लोग बोलते हैं ये कृष्ण बड़ा कपटी है, ये द्रुत है, भाई भाई के बीच में झगड़ा लगा दिया। परंतु ये समझ में नहीं आता है कि अर्जुन के हाथ में जितनी युद्ध मरे सबको उच्च गति प्राप्त हुई। पार्थास्त्र पूता, सब लोग पवित्र हो गए और परम धाम को प्राप्त किए, क्योंकि भगवान उनकी सारथी बने हुए थे। तो इसलिए अहिंसा का मतलब है कि मारे परंतु उसकी प्रगति हो। जैसे यज्ञ में किसी पशु को, घोड़ा हो, बगाय हो, उनको बलि दिया जाता था, बलि का मतलब सैक्रिफाइस किया जाता था कि उनको नवीन शरीर व स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त होते थे। जिनको यज्ञ में बलि दी जाती थी तो उनको नवीन शरीर, नवीन और निरोग रोग रहित शरीर प्राप्त होता था, वह उनको स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त होता। ऐसे नहीं मांस खाने के लिए, अपने जीवा को तृप्ति करने के लिए उस समय यज्ञ करके वो पशु को हत्या करते। इसलिए यहां पर दिया गया है बड़ी भी, बड़ी मतलब एक उपहार है, गिफ्ट, जिसको बड़ी दी जाती है उसको प्राप्त होता है। नहीं अच्छा, इसलिए डिपेंड करता है कि हमारी कैसा मेंटालिटी है। कि ऐसे एक पवित्र स्त्रियों को पूजा करना चाहिए। कश्यप जी कह रहे हैं जो वीरवती है, पुत्रवती है, धातृकाम, धातृकाम शब्द प्रयोग किए हैं कि जो भर्ता अपने पति की वीर्य को धारण किए हैं, संतान को प्राप्त किए हैं, ऐसे स्त्री की पूजा करना चाहिए। क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री वो हमेशा ही अपने पति की चिंतन में रहती है। परंतु असुरों के ऐसे भावना नहीं रहता है, दृष्टिकोण है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि हर स्त्रियों को मां के समान देखना चाहिए, मातृवत परदारेश। लेकिन असुर और देवता में यही अंतर है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए, क्योंकि छिन्ना झपटी चल रहा था, असुर कहे कि देखा हम मेहनत किए क्योंकि हम मंदराचल के मंथन के समय हम सांप की बासु की नाक की हम मुख की तरफ पकड़े थे, बहुत मेहनत हुई है, हम पहले पीना चाहिए। तो उसमें से जो निर्बल असुर थे तो उनको भी एक बूंद नहीं मिला, उन्होंने उस अमृत कलश लेकर की आपस में कहे कि अंग पूर्वम अहम पूर्वम, मुझे पहले चाहिए। ये कह रहे नहीं नहीं भाई, मुझे तो पहले पिलाओ, मैं आपके लीडर हूं। तो ऐसे झगड़ा लग रहा था तो दूसरे असुर सोचे कि हमको तो एक बूंद भी मिलने वाला है नहीं, तो इन्होंने देवताओं की पक्ष ले लिया, कहे भाई देखो ये समुद्र मंथन में देवताओं भी अपने हाथ बटवाए हैं, वो भी मेहनत किए हैं, उनको भी आधा हिस्सा मिलना चाहिए, तुम बेईमान मत करो, ईमानदारी से काम करो। तो ये असुर कहे कि तुम असुर पक्ष में हो कि देवता के पक्ष में हो, हटो हमारे साथ छोड़ दो। तो भगवान देखे कि देवता लोग तो हमारी इच्छा के अनुसार हम जैसे जैसे उनको उपदेश दिए थे, सलाह दिए थे, उसी के अनुसार कार्य किए। तो असुर लोगों को यदि ये अमृत मिल जाएगा तो सांप को दूध पिलाने से जैसे उसके जहर बढ़ता है तो असुरों का भी ऐसे हालत होगा, इसलिए कोई प्रयोजन नहीं कि असुर लोगों को अमृत मिले, ये तो स्वभाव से ही उग्र होते हैं, फिर अमृत पीने के बाद ये सृष्टि को ध्वंस करते हैं। इसलिए भगवान असुर और देवताओं के बीच में प्रकट हो गए, कैसे, मोहिनी रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करके। तो जब देवता लोग देखे तो सब प्रणाम किए, माता लक्ष्मी है, कहते कोष्ठगतम आर्ज्यम, इसमें श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि लक्ष्मी नारायणम, ये स्त्री को लक्ष्मी के स्वरूप समझ करके जो व्रत करने वाले हैं और पुरुष को नारायण के समान समझ करके पूजा करना चाहिए। तो देवता सप्तगुण में रहने के कारण मोहिन को देख करके, मोहिन रूप को देख करके माता लक्ष्मी समझ करके प्रणाम किए, परंतु असुर लोग की जब नजर पड़ा तो असुर लोग तुरंत सोचे ओ अरे इतनी सुंदर रूप है, वास्तविक अमृत के स्वरूप वही है, हमको अमृत नहीं चाहिए, हमको तो यही चाहिए। तो सब कहे कि देखो इनकी नजर तो मेरी प्रति है, ये करे नहीं नहीं मेरी प्रति है, ये तो मुझे ही चाहता। तो फिर दूसरे बार भी कलह शुरू हो गए, तो मानो सब चाह रहे थे कि मोहिनी हमको प्राप्त हो जाए, मोहिनी हमको प्राप्त हो जाए। और असुर लोक ने ये अमृत लेकर की मोहिनी के हाथ में रख दी, क्योंकि हम हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है और आप ऐसे सुंदर स्त्री हैं, सबसे बड़े आप ही न्यायाधीश हैं, जैसे आप न्याय कर देंगी वही उचित है। तो भगवान जो मोहिनी रूप धारण किए थे कहे कि देखो शास्त्र में कहा जाता है स्त्रियां किसकी नहीं होते हैं, वो उनकी मन भावना कैसे भेड़िया जैसे होती है, हमेशा ही पल पल पर नया नया केवल चाह होती है, तुम हम जैसे कोल्टा स्त्री पर कैसे विश्वास कर रहे हो, देखो मेरे साथ में मेरे पति भी नहीं है। तो भगवान धर्मयुक्त तो बात कर रहे थे, परंतु असुर की बुद्धि ऐसे मोहिनी के द्वारा मोहित होने के कारण ये भूल गए, कहे नहीं नहीं सब स्त्रियां हो सकते हैं परंतु आप जैसे स्त्री नहीं हो सकते, आप तो धर्म के स्वरूप हैं, परंतु ये जो धर्म कह रहे थे उसको ध्यान से नहीं सुन रहे थे। कहे ठीक है यदि तुम ऐसे विश्वास कर रहे हो तो फिर जाओ स्नान करके आ जाओ, पंक्ति में बैठ जाओ। और भगवान मोहिन ने असुरों के ऊपर केवल नजर डालते रहे क्योंकि उनका भी ही इच्छा थी, और असली अमृत जो निकला था उसको देवता लोगों को फैलाया। तो दोनों ने मेहनत किए थे, देवता लोग किए थे और असुर भी किए, लेकिन अमृत किसको मिला, देवता। क्यों, मेंटालिटी, सद्भावना के कारण। ये संसार में ऐसे सभी लोग मेहनत कर रहे हैं परंतु असली सुख किसको प्राप्त होता है, जो भगवत आश्रित है। जो धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार अपने कार्यों को, अपने कर्मों को करता है, उसको वास्तविक असली सुख प्राप्त होता है। ना ही देवदत्ता ने असुरों को मोहिनी प्राप्त हुई, ना ही अमृत प्राप्त हुई। लास्ट में देवता लोग अमृत पी करके असुरों के ऊपर हमला किए और सब खत्म हो गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम ये जो भागवत में जो तपस्या व व्रत के बारे में वर्णन है, उसको हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। किस लिए? पवित्रता के लिए, प्यूरिफिकेशन। ये मनुष्य जीवन पवित्रता के लिए है, हम पवित्रता को बढ़ाएं। जैसे यहां पर वस्त्र के बारे में कहा जाता है कि हम सुंदर धुला हुआ वस्त्र को पहनना चाहिए, और प्रभुपाद इंगित करते हैं इसका नहीं कि शर्ट स्कर्ट पहन। जैसे आजकल जो पाश्चात्य जगत को नकल करते हुए सब लोग बब कट कर दिए, बाल काट दिए, छोटा कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, तो समाज के सुधार होना चाहिए। इससे नारकीय जीवन का प्रारंभ होता है। लोग सोचते हैं कि एक फैशन है, ये फैशन नहीं है। आप अपने फेस को देख लेना चाहिए किस प्रकार है। वो कहते हैं कि यदि किसी के शरीर सुंदर है परंतु उसके अंदर यदि एक लेपर्सी का क्या कहते हैं, कोड़ का बीमारी है, तो कितने भी सुंदर शरीर है वो कोड़ उसके शरीर को गला देगा, नष्ट कर देगा। और दूसरे अर्थ में और चाणक्य पंडित कहते हैं, मानो किसी के प्राण नहीं है किसी शरीर में और हम उसको सुंदर वस्त्र गहना सब पहना दे तो क्या लाभ है। जब उसके शरीर में जीवन नहीं है तो उनको कितना भी सजाओ। तो उसी प्रकार जब धर्म नहीं है जीवन में, हम कितने भी सामाजिक स्तर पर है ना वैज्ञानिक स्तर पर कितने भी उन्नत कर ले तो कोई लाभ नहीं है। तो वास्तविक धर्मों को रक्षा करने के लिए इस संस्कार को अपनाना चाहिए, और संस्कार के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकता है। हम जो कहते सिविलाइज्ड, ये सिविलाइज्ड के लिए ये वास्तविक उपदेश है। इसलिए अन्य प्रकार की जो भावनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, उसको उच्छेद किया गया है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमम निर्मात श्राणम सता। ये धर्म के नाम पर जितना सारी कपटता है, कैतव चिटिंग प्रपंचिटी, ये सबको उच्छेद किया गया है। इंद्र की कपटता, पृथ्वी महाराज की घोड़ा चोरी करना सन्यासी वेष बना करके, रावण का भी कपटता सन्यासी बनकर के किसी दूसरे स्त्री को अपहरण करना, भिक्षा मांगने की इच्छा। इसी प्रकार शास्त्र की हम चर्चा करते हैं, ये कि गोली खट्टी नहीं है, बस हम बातें कर ले थोड़ा से मजा आए। तो वास्तविक समझना चाहिए कि यदि हम इस प्रकार धर्म के नियम को खुद पालन नहीं करते, आचरण नहीं करते हैं, कि हमारी जीवन की क्या दशा होगी, क्या दैन्यता आएगी। लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपए बैंक में रखते हैं परंतु मन शांति नहीं है, क्योंकि जब तक सद्भावना नहीं रहता है तो उद्भावना से हमारे अभाव दूर नहीं होता है, हैंकरिंग और बढ़ता है, अभाव हमेशा ही रहता है। इसलिए सुखी जीवन के लिए और सरलता को अपनाना चाहिए, इस श्रीमद् भागवत में बना है सिंपल लिविंग। आई थिंक तो इस प्रकार माता दीति को कश्यप जी उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार अर्चना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, किसकी? ना सौभाग्यवती पुत्रवती स्त्रियों की, और अपने पति की किस प्रकार अर्चना करना चाहिए, मधुर भाषण और उनके मन के अनुसार। हाँ, स्त्रियों की और पतिव्रता स्त्री के दो कर्तव्य हैं घर को सुखी बनाने के लिए। कहते स्त्रियों को हमेशा ही अपने हाथ से भोजन बना करके पति को खिलाना चाहिए, और दूसरा किसी भी परिस्थिति में स्त्री को चाहिए अपने पति के साथ मधुर व्यवहार करे, मधुर भाषण करे। पति कड़वा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे काम उनको करना पड़ता है बाहर जाकर, लेकिन आजकल तो ये वर्ड यूज करते हैं कि हाउसवाइफ, और स्त्री हमेशा ही इसको कहते गृहिणी है, जो घर में ही रहे, घर को देखभाल करे, साज सामान को ठीक से रखे, बच्चों का केयर ले, उसको कहा जाता है गृहिणी। लेकिन आजकल जो सर्विस करते हैं तो पता नहीं कैसे बैलेंस रखते हैं परिवार के जीवन में। कुछ स्त्रियां होते तो कहते हैं हमको बोरिंग फील होता है अकेले अकेले, क्या है, इसलिए हम ऑफिस जाते हैं तो वहां तो 5-10 लोग मिलेंगे बात करने के लिए। गुड़गांव में एक है भक्त है, तो मैं उनको पूछा क्या करते हैं आपका पत्नी, कहते स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है, और दो दो बच्चे को उन्होंने नर्सरी में छोड़ देते, अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ करके जाते। मैं कहा क्यों ऐसा, अपने बच्चों को तो घर में केयर ले सकते। कहते नहीं, वो कहती है कि उसको बोरिंग फील होता है, कितने समय टीवी के पास बैठे हुए, कितने समय चैंटिंग करता है, 2-4 माला करता है। अपने बच्चों को नर्सरी में डालती है 4,000 रुपया देकर के, और खुद स्कूल में उनको 9,000 रुपया मिलता है, तो वो कहता है कि मुझे बोरिंग फील होता है। मैं कैसे हाउसवाइफ है। तो आज हम अपने को भी सुधार नहीं पाते क्योंकि समाज का ऐसे व्यवस्था हो गया है, और अपने मन में भी इसी प्रकार जो भावना बैठ गया है इसको दूर करने में बहुत कठिन है। इसलिए चिकित्सक चाहिए जो हमारे रोग को दूर करे। इसलिए पारिवारिक जीवन को श्रृंखलित करने के लिए ये सब वैदिक नियम को पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसकी कोई प्रश्न है? तो वही कहा कि अपराध लगा उनके प्रति, अपराध की फल बहुत भयंकर निकलता है, अपनी शक्ति काम नहीं करता है। इंद्र जैसे व्यक्ति को भी ब्रह्महत्या के दोष लगा तो 1 साल के लिए वो कमल सरोवर में जाकर की कमल की फूल की जो डंटल है उसका अंदर घुस के रहना पड़ा सूक्ष्म रूप। जो स्वर्ग की देवता हैं, जिनके हाथ में हमेशा वज्र रहता है, वज्र पानी, उनको भी दशा भुगतना पड़ा एक ब्राह्मण की हत्या करने के कारण विश्वरूप। निश्चित वो अपना धर्म नहीं निभाए, उस समय उनकी पत्नी को क्षमा करना चाहिए था। और ब्राह्मण का गुण है क्षमा, समा दमा तपह शौच क्षांति, क्षांति का मतलब है क्षमा से। धर्म के नियम को उल्लंघन उस समय होता है कुछ परम इच्छा को सिद्ध करने के लिए, कुछ हायर चीज को। जैसे एक शूद्र भी तपस्या कर रहा था तो जैसे कि ब्राह्मण का शक्ति नष्ट हो रहा था, तो भगवान श्री राम गए और उसको बता दिया। और कोई किसके पास लेकिन वो स्त्रियों को नहीं देखा कि देख के मोहित हुआ, वो तो भगवान की रूप देख कर के। भगवान कहते हैं ममो माया दुरत्तया, लेकिन ये माया शिव जी के ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि उनके पत्नी ही माया देवी है। जैसे उसके विचलित नहीं हुए, कहा कि रिजेक्ट कर दिया उनको, तुम भगवान के साथ छल किए, टेस्ट करने के लिए गए, जाओ। सती को शरीर त्याग करना पड़ा। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते कि शिव जी को यही माया शक्ति कभी बस नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी पत्नी ही माया है, दुर्गा देवी है। परंतु भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरी जो परम शक्ति है, यहां तक शिव ब्रह्मा आदि को मोहित करने वाला है, मुह्यंति जत सूरय, ये दिखाना चाह रहे। इसके बाद शिव जी फिर शांत हो गए। अरे देखो, प्रभु ने मुझे मना किया कि मत देखो, मैं तो केवल असुर लोग के साथ छल करके देवता लोग को अमृत पिलाने के लिए ऐसा किया था, तुम्हारे ये सब देखना कोई आवश्यक नहीं। फिर भी शिव जी का नहीं नहीं थोड़ा से मैं देखना चाहता हूं। तो फिर अकल आ गया, नहीं भगवान जो चाहते हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। दोनों चीज चाहिए, बाह्य शुद्धि भी चाहिए और आंतरिक शुद्धि चाहिए। यस नहीं, पहले बाहर शुद्धि रखो और जो विधि है उसको पालन करते हुए मन की शुद्धि हो जाती है। यस माता जी, क्योंकि पहला है कि हमारे जो संविधान है वो धर्म की नीति पर नहीं है, इसलिए जो भी कर्म किया जाता है वो अधर्मिक है। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुआ तो कहे कि सबको वीर गति प्राप्त हुआ, क्यों ना वहां धर्म के बीज पहले से बोया हुआ था, जिसलिए उनका नाम था धर्म क्षेत्र, तो धर्म के क्षेत्र। लेकिन यहां सब और धर्म के क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र में हम जाते हैं लोग यही शराब दुकान खोलना, स्लटर हाउस खोलना और जितने चाहिए आप चोरी बेईमानी सब काम कर सकते, तब फिर लोग समझते हैं कि ये महान व्यक्ति है। इसलिए जो भी कार्य किया जाता है सबकी दोष। सबका अंदर यही अहंकार है बदला लेने का, परंतु भगवान अर्जुन को कहे जदहंकार आश्रित्यम नोजस्यम इति मन्यते मिथ्येस्य व्यवसायस्ते प्रकृति त्वं नियोक्ष्यति। यदि आप अहंकार में वशीभूत होकर ही कहोगे कि नहीं मैं मुझे युद्ध नहीं करना है, फिर वो आपको प्रकृति ने फोर्स करे कि तुम्हारे क्षेत्रीय स्वभाव है, तुम युद्ध किए बिना नहीं रह सकते। फिर भगवान कहते जस्य नाहं कृतो भाव बुधिरी जस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका न हन्ति न निबध्यते, कि जो अहंकार को त्याग करके कर्म करता है, अपने धर्म के नियम को पालन करता है, तो करोड़ों लोगों को भी मार सकता है, परंतु फिर भी उसको मर्डर केस नहीं लगेगा, ना इधर इसको फांसी मिलेगा ना उधर। करके देखो, यदि भगवत आदेश के अनुसार आप ऐसे कार्य कर सकते हैं तो हम मुक्त रहेंगे हमेशा। तो क्या और कोई, किसका और कोई प्रश्न है? बेटी नहीं, बेटी को नहीं कहा गया है, यदि उससे जन्मा हुआ है, क्योंकि बेटी का स्वभाव मां के जैसे होती है। इसलिए पुत्रों को ही पिता के स्वरूप कहा जाता है। इसलिए सती ने शरीर त्याग की, क्यों? यदि उसकी स्वभाव उनके पिता जैसे होता तो वो दक्ष उनको कहते कि देखो तुम इतना दिन के बाद आए हो तो बैठो, तो अपने बेटी को भी, क्योंकि वो शिव जी का पत्नी है, ऐसे सोचकर कि उनके साथ बात भी नहीं की, जिससे सती को ये मजबूरी होना पड़ेगा, भाई ऐसे पिता से ये शरीर लेकर क्या लाभ है, क्योंकि लोग कहेंगे ये दक्ष पुत्री है, तो वास्तविक पुत्री पिता का नहीं होता है। उनकी मां ने क्या बड़ा सत्कार की, उनका बहन तक भी कोई बात नहीं की, तो इसलिए स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि पुत्री का शरीर व पुत्री की स्वभाव पिता जैसे नहीं होता है, मां के कुछ गुण आता है पुत्री के पास। है बहुत है, लेकिन पहले पूछा जाता है आपका पिता कौन है। आजकल तो चेंज हो गया कि मां के नाम लिखा जाता है, आजकल फॉरेन में कोई पिता भी नहीं होते, लेकिन आप जाओ कोई भी ऑफिस में पहला किसका नाम होता है, पिता की होता है, संतान पिता की है। शकुंतला ने जब गर्भधारण की भरत महाराज के, तो जब वो पुत्र जन्म लिया भरत को लेके गए, तो दुष्यंत महाराज ने कहा नहीं मैं कब किया था, इसे टालना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी संबंध हुआ था जंगल में कर्ण ऋषि के आश्रम में। तो देवता लोग कहे कि देखो मां तो सिर्फ इसको धारण करती है कुखी में, परंतु जो संतान होता है वो तो पिता की है, इसलिए भरत तुम्हारी संतान इसको भरण पोषण करो, देवता लोग कहे। जैसे इसे कहा जाता है स्पष्ट रूप में, ये शायद सातवां स्कंद में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे खेती होता है, तो खेती में किसान क्या करता है, हल करके बीज डालता है ना, लेकिन जो फसल होता है वो किसके होता है, जो मालिक है, जमीन के मालिक है, किसान तो सिर्फ काम करता है। और खेती में वही अन्न उत्पन्न होता है जो बीज डाला गया है, ठीक नहीं, पर वो डिफरेंस ये है कि गर्भ में यदि पुत्र है तो पिता की गुण प्राप्त करता है, परंतु यदि पुत्री है गर्भ में तो मां की गुण को प्राप्त करता है। क्योंकि उस समय वो कहते ना क्या है, दैवेन जंतुर्देहं उपपद्यते, कर्मणां दैवनेत्रेण जंतुर्देहं उपपद्यते, स्त्रियां उदर प्रविष्ट पुंसरेतः कणाश्रिय। यह तीसरा स्कंद की 31वां अध्याय की पहला श्लोक है, वो तात्पर्य पढ़ सकते कि क्यों पुत्र का पिताजी का गुण ज्यादा आता है, पुत्री का नहीं आता है। एक विज्ञान है, शरीर का विज्ञान है, लेकिन इस श्रीमद् भागवतम में लेकिन हम सबका ये उल्टी दशा है कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि पुत्र व संतान मां की नहीं होती है, बाप का है, परंतु बाप को कौन देखता है, क्योंकि मां के द्वारा पहले गर्भ में रहता है, मां के स्थान से लालन पालन होता है, मां की भाषा सीखता है, तो इसलिए सब बच्चे मां को ही याद रखते हैं, बाप को कौन याद रखता है कि नहीं। परंतु प्रभुपाद कहते हैं कि हम बाप की हैं, इसलिए हम कई जन्म से ये प्रकृति के द्वारा लालित पालित हो रहे हैं तीन गुण से, इसलिए परम पिता की ख्याल नहीं है कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इसलिए पिता को याद रखना चाहिए। इसलिए जनक इनको कहते जननी व धात्री, धारण करने वाली। और किसकी कोई प्रश्न है? यस। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो ऐसे पुत्र की प्राप्ति की नहीं चाह रही थी, एक जो पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार सके, इसलिए कुछ स्पेसिफिक नियम है पुंस व्रत। ऐसा हर स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर स्त्री को ऐसे पुत्र प्राप्त करने के लिए, परंतु पय व्रत विधि सबके लिए है। समझे इसका परिणाम क्या हुआ? जो पुत्र इंद्र की शत्रु बनना चाहिए था तो वो इंद्र के मित्र बन गए, और एक के बदले वो 49 हो गई। परंतु जो पयव्रत विधि है जो अदिति ने की थी, जो स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, तो ये विधि को पालन करना चाहिए सबके लिए, सभी स्त्रियों को यदि चाहे। ठीक है, और कोई किसकी प्रश्न? समय हो गया है, कुछ प्रश्न मुझे भी पूछना था आप लोगों से। तैयार है उत्तर देने के लिए? कश्यप जी किस परिस्थिति में अपने पत्नी को ये उपदेश दे रहे हैं, किस कारण से? करेक्ट। शुद्धिकरण का मतलब किसकी शुद्धिकरण? किस प्रकार शुद्धिकरण, कौन सी शुद्धि, किस प्रकार भावना की शुद्धि? करेक्ट, द्वेष की शुद्धि, जो इंद्र को मारने के लिए द्वेष, किसको खतरा में डालने के लिए द्वेष की शुद्धि। तो वास्तव की सबसे बड़ा खतरा है राग और द्वेष। इसलिए ये जो विधि जो बतलाए कश्यप जी, ये कौन सा विधि है? ये कर्मकांड विधि व ज्ञान कांड न भक्ति, कौन सा? कौन सी विधि है ये? भक्ति। इसलिए भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं तुरंत। जब इंद्र प्रकट हुआ दीति के सामने, तो ये आश्चर्यचकित हो गई, अरे, और अपने हृदय की बात खोलकर ही कहने लगी कि मैं तुमको मारने के लिए व्रत किया था, तुम ऐसे कैसे पहुंच गए, और मैं तो एक संतान के लिए इस व्रत को अनुष्ठान किया था, ये 49 पुत्र कैसे हो गए? और इसकी इफेक्ट पड़ा इंद्र के ऊपर। इंद्र कहा, माता देवता लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, मैं अपने भी स्वार्थ साधन करने के लिए तुम्हारे साथ छलना करके तुम्हारे टहल बन गया था, सेवक बनकर के सेवा किया, परंतु अवसर लेकर के तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करके मैं ऐसा ही तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने चाहा, परंतु तुम अमोघ व्रत किए थे, भगवान हरि की आराधना किए थे, जिसलिए तुम्हारे गर्भ नष्ट नहीं हुआ बल्कि वो उनचास हो गया। और ये भी पुत्र ऐसे इंद्र के प्रति कोई द्रोह नहीं रखे, जैसे वृतासुर प्रकट हुआ था, कौन सा वो ऋषि जिन्होंने यज्ञ से उत्पन्न किए थे वृतासुर को, तोष्टा, तो उन्होंने इंद्र के साथ लड़ाई की है ना वृतासुर, परंतु ये जो अंचास उन्होंने तुरंत इंद्र को कहे, हम तो आपके भाई हैं, हम आपके मित्र हैं, साथ में ले चल। तो ये आश्चर्य भगवत विधि को अपनाने से तुरंत हृदय की जो द्वेष है वो नष्ट होता है, राग द्वेष बा इच्छा द्वेष, जो संसार की जन्म लेने के ही कारण है, दुख की कारण है। हमारी पास लाखों करोड़ों रुपया है, सब फैसिलिटीज हैं, परंतु हम दूसरे के धाम को देखकर जलते हैं कि अरे देखो उनके पास बहुत है, हम अपने धन से संतुष्ट नहीं, यह द्वेष है। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या है, निर्मात सराणम सताम, जो मस्त्रता रहित है वो ही इस भागवतम को समझ सकते हैं, वह इसके रस को आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय, कृष्ण बलराम जीव की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण जीव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।